नमस्कार श्रोताओं, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन के इस अंक में मैं हूं आज आपके साथ विनय सक्सेना, और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ श्री सचिन कुमार जी। सचिन जी नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में
धन्यवाद।
पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज बेंगलुरु में खेला गया। टी20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच मैच खेला जा रहा है। यूरो कप 2024 फुटबॉल चैंपियनशिप में आज पोलैंड और नेदरलैंड्स के बीच मैच खेला गया। अल्टीमेट टेबल टेनिस यूटीटी 2024 का आगामी सीजन 22 अगस्त से 7 सितंबर तक चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज बेंगलुरु के एम चिन्ना स्टॉमी स्टेडियम में खेला गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 265 रन बनाए, जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 38वें ओवर में 122 रन पर आउट हो गई। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने सबसे अधिक 117 रन बनाए और दीप्ति शर्मा ने 37 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से सियोने लूस ने 33 रन बनाए। भारत की ओर से आशा शोभना ने 21 रन देकर 4 विकेट लिए। दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम इस दौरे में 3 एकदिवसीय मैचों के साथ 1 टेस्ट मैच और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। सचिन जी, इस जीत से मोरल तो बूस्ट हुआ ही है।
जी बिल्कुल,
क्योंकि साउथ अफ्रीका को हम लेकिन फिर भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अभी 2 मैच बाकी हैं और वो बाउंस बैक की कोशिश करेंगे
निश्चित तौर पर। लेकिन शुरुआत जो है बहुत जबरदस्त हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और
मॉरल डाउन किया है।
जी, और हमने जो है जो हमारी टीम खेलने आई है उसको हम लोगों ने पहले ही मैच में तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव में ले लिया है, उसको बढ़त बना ली है। और इस मैच की सबसे खास बात यह है विनय कि पहले तो ये लग रहा था कि स्मृति मंधाना ही इस मैच की हीरोइन है,
हीरोइन
बिल्कुल, लेकिन जब गेंदबाजी का जब हमारा जब नंबर आया तो जिस तरह से जो है
शोभना ने और
बिल्कुल गेंदबाजी, खासतौर से शोभना की गेंदबाजी जिस तरीके से रही, मात्र 21 रन देके उन्होंने 4 विकेट लिए हैं, और उनका ये डेब्यू मैच है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि कोई खिलाड़ी अपने पहले ही मैच में किस तरीके से प्रदर्शन करते। और वो, और आप ये देखिए ना कि इतने कम रन बनाने दिए कि अगर मात्र 5 रन और बनाए होते स्मृति मंधाना ने तो उन्हीं के टोटल के बराबर पहुंच जाता है। तो ये इस तरीके से अगर हम देखें तो ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि बहुत कम स्कोर पे जो है हमारी गेंदबाज उनको रोकने में सफल रही हैं, क्योंकि जिस विकेट पे भारतीय बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कत आ रही थी, और वहां पे एक तो स्मृति ने इतनी अच्छी पारी खेली, बहुत समझदारी सूझबूझ से उन्होंने काम लिया, उन्होंने देख लिया,
सिंगल हैंडेड इनिंग को आगे बढ़ाया है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए लगातार ही विकेट गिरते थे, 99 रन पे हमारे 5 विकेट गिर चुके थे, और वो ओपनिंग करने आए, उन्होंने देखा दूसरे छोर से कि हमारे बल्लेबाज किस तरीके से जा रही है वापस, तो जो उन्होंने वहां पे जो समझदारी दिखाई वो बड़ी एक परिपक्व एक खिलाड़ी की वो निशानी है कि किस तरीके से उन्होंने परिस्थितियों को संभाला और अपनी टीम को इतने बड़े एक टोटल तक लेके गई। और
शोभना ने जिस तरह से आज 4 विकेट लिए तो डेब्यू मैच में, तो ये एक भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है
निश्चित तौर पर। लेकिन एक उनके साथ एक दुविधा बस मुझे यही लग रही कि बहुत लेट उनका जो है ये डेब्यू हुआ है, उनकी उम्र जो है वो ठीक ठाक है, वो 30+ की है वो अभी, तो एक ये चीज हो सकती है कि उनके करियर में बहुत लंबा समय उनको ना दे सके, लेकिन फिर भी एक विकल्प
जो समय मिलेगा भारत
जी, बिल्कुल 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 नहीं, जैसे होता ना कि एक खिलाड़ी बहुत कम उम्र में आता है तो हम कहते हैं जैसे बाकी हमारी जो बैटर्स आई हैं जो अच्छा खेल रही हैं, और भी जो कुछ खिलाड़ी हैं, मिताली जिस तरह से आई थी टीम में और एक लंबा उन्होंने समय गुजारा, तो मतलब उस दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद उनके पास उतना समय ना हो, लेकिन उन्होंने एक जो शुरुआत है वो तो बहुत जबरदस्त की है।
अब बात करते हैं टी20 विश्व कप की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक 6 ओवर में आयरलैंड ने 6 ओवर में 5 विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें पहले ही विश्व कप से बाहर हो चुकी हैं। ग्रुप ए से भारत और अमेरिका ने सुपर 1 में अपना अपना स्थान पक्का कर लिया है। इससे पहले आज सुबह खेले गए ग्रुप बी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। स्कॉटलैंड की इस हार से उनका विश्व कप से बाहर होना तय हो गया है। इंग्लैंड ने कल नामीबिया को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 41 रन से हरा दिया और बेहतर नेट रन रेट के आधार पर ग्रुप बी से सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। सचिन जी बड़ी टीमें अपने नाम के हिसाब से ही खेल रही हैं, लेकिन कुछ छोटी टीमें हैं जैसे यूएसए और अदर कंट्रीज, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है।
बिल्कुल
किया है। जैसे नेपाल और साउथ अफ्रीका में एक रन से अंतर रहा मैच का।
बिल्कुल बिल्कुल, और अभी भी देखिए नेपाल का एक मैच बचा हुआ है, तो और कोई भरोसा नहीं है कि वो जिस तरह से वो खेल रहे हैं, वो एक बार की उलटफेर की स्थिति में पहुंच गए थे। तो उस तरीके से देखा जाए तो अब बड़ी टीमों के लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट नहीं रहा। देखिए
पाकिस्तान जैसे बाहर हो गई, न्यूजीलैंड बाहर हो गई है, इंग्लैंड तो नेट रन रेट से क्वालिफाई कर गए,
न्यूजीलैंड बाहर
जाते जाते बच्चे न्यूजीलैंड बाहर हो गई।
अब लेकिन इंग्लैंड को भी देखिए ना कि ऑस्ट्रेलिया के मैच पे डिपेंड करना पड़ा कि अगर वो हरा देंगे तो हम आगे आएंगे। जी बिल्कुल, तो ये स्थिति जो है बड़ी टीम के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो अब उनको सुपर एट में बहुत सावधान होकर मुझे लगता है कि खेलना होगा,
सभी को सुपर एट में सावधान होकर खेलना पड़ेगा। बिल्कुल
बिल्कुल, सभी
स्थिति रहेगी,
बिल्कुल रहेगी, क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी टीम कुछ भी यहां पे करने में सक्षम। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो मैच ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई मैच अच्छे स्कोर तक जा रहा है, कोई बहुत ही लो स्कोरिंग मैच हो जा रहा है।
अधिकतर मैच तो लो स्कोरिंग ही रहे, 120 का टोटल भी पार नहीं हो पाया अधिकतर मैचों में।
जी मुझे लगता है कि इसके पीछे एक वजह यही हो सकती है ना कि चूंकि ड्रॉप इन पिचे हैं, ये दूसरी जगह बनाई गई हैं और अमेरिका में लाके रखी गई खेलने के लिए, तो एक वजह ये हो सकती है। फिर तो उसे सामंजस्य नहीं बैठा पाए, क्योंकि वो खुद ही नहीं सामंजस्य बैठा पाई अपने उस नए माहौल में जाके, तो एक तो वजह ये हो सकती है। बाकी ये कि जो नई टीमें मिली हैं खेलने के लिए, जो उनके खिलाफ खेल रही हैं, उनके खेल के बारे में कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है,
नहीं की जा सकती,
तो वो भी एक वजह है कि कुछ समझ में नहीं आ।
पिच पे सवाल कर लेते हैं, पिच पे अब ऐसा है ना कि असंतुलित पिचें मिली हैं।
जी
तो क्या मतलब ये समझा जाए कि T20 के लिहाज से बैट्समैनों को वही पिचे चाहिए जिन पे फ्लैट बॉल आए और वो बैट से लगते ही सीधा चौके और छक्के के लिए जाए?
नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा तो मैच होना चाहिए जिसमें दोनों के लिए बराबर मौका हो, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। मतलब एक कहते हैं ना कि एक संतुलित खेल देखने को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि खेल जो है वो इसमें बल्लेबाजों का ही देखने जाते हैं लोग। अगर हमें अमेरिका में अगर आप क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे आपने T20 वर्ल्ड कप का आयोजन रखा है और वहां पे मैचेस खेले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके लिए ये भी जरूरी था कि पिचें ऐसी हों जैसे IPL में जो रन देखने को मिलते हैं कि मतलब 220 बन रहे हैं तो 220 भी चेज हो रहा है।
चलिए आशा करते हैं कि वेस्टइंडीज में ऐसी पिचेस मिलेंगी।
वेस्टइंडीज की पिचों का थोड़ा मिजाज अलग है, हम सब जानते हैं।
अब बात करते हैं यूरो कप 2024 की। यूरो कप 2024 फुटबॉल चैंपियनशिप में आज पोलैंड और नेदरलैंड्स के बीच मैच खेला गया। नेदरलैंड ने पोलैंड को 2-1 से हरा दिया। भारतीय समयानुसार आज रात 9:30 बजे स्लोवेनिया और डेनमार्क के बीच मैच खेला जाएगा। देर रात भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे इंग्लैंड और सर्बिया के बीच मुकाबला होगा। इससे पहले कल खेले गए मैचों में स्विट्जरलैंड ने हंगरी को 3-1 से हराया, स्पेन ने क्रोएशिया को 3-0 से हराया और इटली ने अल्बानिया को 2-1 से हराया। सचिन जी बड़ी टीमें अपने नाम के हिसाब से प्रदर्शन कर रही हैं।
बिल्कुल बिल्कुल,
अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है।
हाँ लेकिन अल्बानिया के मैच में एक चीज बहुत,
अल्बानिया ने पहला गोल बहुत
जल्दी
कर दिया,
गोल जो किया वो एक रिकॉर्ड गोल है, जो उनके जो नेदिम बजरामी है उन्होंने मात्र 23वें सेकेंड में ये गोल कर दिया, तो ये एक रिकॉर्ड है उनके लिए। लेकिन आप ये देखिए कि अच्छी बात ये रही कि इटली के लिए कि इतनी जल्दी
उन्होंने रिकवर कर लिया,
भी उन्होंने अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने दिया, जबकि वो लगातार उनके जो समर्थक हैं वो स्टेडियम में एक तरीके से जश्न में डूबे हुए थे। खिलाड़ी भी सोच रहे होंगे कि अरे वाह क्या बात है, लेकिन इटली आखिर इटली है, वो पिछली बार का यूरो चैंपियन भी है, कई बार का वर्ल्ड चैंपियन है, तो उसने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही खेल दिखाया और ये दिखाया कि देखो बड़ी टीमें किस तरीके से खेलती हैं।
इस वर्ल्ड कप में एक और चीज, यूरो कप में एक और चीज देखी गई है कि अधिकतर टीमें अपने यंग प्लेयर्स को आगे कर रही हैं, जैसे जर्मनी।
नहीं देखिए ये तो अब देखिए कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो बहुत ही एज के होके भी खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि नए खिलाड़ी आएंगे पुराने जाएंगे, और कुछ खिलाड़ियों के लिए तो मुझे लगता है कि ये
आखिरी
यूरो ही होगा, है ना, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए भी होगा क्योंकि वो 6 बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो इस तरीके से तो नए खिलाड़ियों को आना तो अच्छी ही बात है, और कुछ खिलाड़ी जो है हमें लगता है कि जब जाते जाते अपना अगर वो चमक दिखा के जाते हैं
तो ये यादगार रहेगा।
बिल्कुल, फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत सुखद क्षण होंगे वो।
अब बात करते हैं टेबल टेनिस की। अचंत शरत कमल और मनिका बत्रा उन 5 भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें में अल्टीमेट टेबल टेनिस UTT 2024 से पहले उनकी संबंधित फ्रेंचाइजी ने दोबारा लिया है। यूटीटी का आगामी सीजन 22 अगस्त से 7 सितंबर तक चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा।
पिछले सीजन की उपविजेता चेन्नई लायंस ने दिग्गज शरद कमल की सेवाएं बरकरार रखी हैं, जबकि बेंगलुरु स्मैशर्स ने सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय मनिका बत्रा के साथ खिताबी प्रयास जारी रखने का विकल्प चुना है। इस फ्रेंचाइजी ने आगामी सीजन के लिए अपने शीर्ष पैडलरों को साथ बनाए रखने को प्राथमिकता दी है। गत चैंपियन गोवा चैलेंजर्स ने हरमीत देसाई को अपने साथ बरकरार रखा है, जबकि जी सत्यन दबंग दिल्ली टीटीसी के साथ बने रहेंगे। यो मुंबा टीटी ने भी प्रतिभाशाली युवा मानव ठक्कर के साथ अपने करार को एक और सीजन के लिए बढ़ा दिया है। पहली बार यह 8 टीमों की लीग होगी जो युवा भारतीय पैडलर्स को दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इस महत्वपूर्ण विस्तार का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा के स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना और खेल की उभरती प्रतिभाओं के विकास को बढ़ावा देना है। नए सीजन में दो और टीमों को शामिल करने के कारण टूर्नामेंट के प्रारूप में भी बदलाव देखने को मिलेगा। 8 टीमों को अब 4-4 टीमों के दो ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक फ्रेंचाइजी लीग चरण के दौरान 5 मुकाबले खेलेगी, जिसमें वे अपने अपने ग्रुप की अन्य 3 टीमों और दूसरे ग्रुप से रैंडम रूप से चुनी गई 2 टीमों का सामना एक बार करेंगे। इसके बाद प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। स्पोर्ट्स कैन के लिए जया भारती।
सचिन जी, एक अच्छा कदम टेबल टेनिस की दिशा में, जिससे कि हमारे उभरते हुए सितारों को भी अपना खेल दिखाने का मौका मिलेगा।
जी निश्चित तौर पे, देखिए जितनी भी इस तरीके की लीग शुरू हुई हैं या अगर कोई हो सकती हैं तो वो सभी खेलों के हित में ही है। और आप देखिए कि कुछ लीग ने तो बहुत अच्छा अपना प्रभाव भी छोड़ा है, बैडमिंटन का भी असर दिखा है, क्योंकि हमारे पास बैडमिंटन की इस टाइम एक बहुत अच्छी आप कह सकते हैं कि
टैलेंट
है हमारे पास
है,
बिल्कुल है। कबड्डी का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि ग्रामीण कुछ खेल ऐसे होते हैं जो शहरों के नहीं लिए नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा खेले जाते हैं, तो वो उसने वहां पे जाके अपनी लोकप्रियता हासिल की, उसको बहुत अच्छा दर्शक वर्ग भी मिला और हमें अच्छे खिलाड़ी भी
टेबल टेनिस में भी हम बेंच स्ट्रेंथ देखें इस बार।
जी बिल्कुल, आप देखिए ना कि टेबल टेनिस में लगातार हमारे पास अच्छी खबरें आती हैं। आप देखिए, अब पहले हम इतना अच्छा नहीं करते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी टूर्नामेंट होते थे तो अमूमन हमारे खिलाड़ी सिर्फ एक औपचारिकता के लिए मैं कह सकता हूं कि जाते थे, लेकिन पिछले कई सालों से और अब तो और ज्यादा ये देखने को मिल रहा है कि वहां से हमें मतलब पोडियम पे पहुंचने की भी खबरें आती हैं कि कोई ना कोई मेडल लेके आते हैं।
आइए श्रोताओं, अब चर्चा कर लेते हैं कुछ और खेल खबरों पर। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी को आज अंतिम ओलंपिक क्वालिफायर के शुरुआती दौर में अजरबैजान की याया गुल रामजानोवा से हार का सामना करना पड़ा, जबकि अंकिता भगत और भजन कौर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रहीं। अंकिता और भजन व्यक्तिगत महिला कोटा हासिल करने से महज एक जीत दूर हैं। व्यक्तिगत कोटे शीर्ष 8 देशों को दिए जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन चेक गणराज्य में आयोजित ग्रांड प्री में महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की ली कियान से हार गईं और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी लवलीना को कल रात मौजूदा एशियाई खेलों की चैंपियन के खिलाफ अपने अंतिम मुकाबले में 2-3 के विभाजित फैसले से हार का सामना करना पड़ा। सचिन जी, लवलीना क्वालिफाई तो कर गई हैं ओलंपिक के लिए, लेकिन ओलंपिक से जस्ट पहले वो हार गई हैं, तो मनोबल पे क्या असर पड़ेगा और मतलब कैसे देखें इसको?
ये तो बात आपकी सही है कि वो हार गई हैं, लेकिन अब ये भी देखने वाली बात है कि वो किस स्तर के खिलाड़ी के खिलाफ हारी हैं। वो भी एक बड़ी स्टार मुक्केबाज हैं और उनके खिलाफ उनको हार का सामना करना पड़ा है। इस बार ये जरूर है कि लवलीना जो है उस तरीके से सिर्फ एक ही जीत अभी तक हासिल कर पाई है इस सत्र में, तो लेकिन जब तक वो जाएंगी, जब ओलंपिक तक जाएंगी, तो मुझे लगता है कि वो एक और नई तैयारी के साथ खिलाड़ी
हार से कुछ सीखेंगी।
बिल्कुल सीखेंगी, हर खिलाड़ी देखिए कुछ न कुछ एक अच्छे पक्ष लेके आता है, चाहे वो हार हो चाहे जीत हो, तो निश्चित तौर पे वो उससे और मजबूत होकर निकलना चाहिए उनको। और वो जो उन्होंने टोक्यो में जिस तरीके से जो खेल दिखाया था, मुझे लगता है कि उसकी हम लोग फिर उम्मीद कर सकते हैं उनसे।
भारतीय गोल्फर ज्योति रंधावा लीजेंड्स टूर यूरोप में पॉल लॉरी मैच के क्वार्टर फाइनल में जेम्स किंगस्टन से हार गए हैं। दूसरी तरफ महिला गोल्फर अवनी प्रशांत चेक लेडीज चैलेंज गोल्फ में निराशाजनक शुरुआत के बाद भी संयुक्त रूप से 45वें स्थान पर बनी हुई हैं। एक अन्य टूर्नामेंट में भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने मीजर एलपीजीए क्लासिक के तीसरे दौर के आखिरी 5 होल में 3 बर्डी करने के बाद संयुक्त रूप से 10वें से 14वें स्थान पर खिसक गई हैं। श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और चर्चा करें, कल फिर मिलेंगे। सचिन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद बिना।